खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 5 बाब उसकी 18वीं आयत से 21वीं आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल हम सब की तरबियत और नसीहत के लिए, हौसला फजाई के लिए और तालीम के लिए हम सबको सिखाता है और कहता है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मजामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं कि खुदावंद खुदा के हजूर में अगर हम रोज़ा रखें, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारें, अगर कोई मिन्नत माने, अगर कोई खुदा के हजूर दुआ करें तो रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में करें। क्योंकि बहुत दफ़ा हम इंसान होते हुए देखो देखी बहुत दफ़ा बहुत कुछ करने की ख्वाहिश करते हैं लेकिन नाकाम होते हैं, और ये वो बहुत ख़तरनाक हालत है मसीही ज़िंदगी में जब हम कुछ अपनी ख्वाहिश से करने के लिए कहते हैं करते हैं और जब नाकाम होते हैं तो हम ऐसे गिरते हैं कि दोबारा उठने की हम ख्वाहिश नहीं करते। और ये किस लिए होता है? क्योंकि हमने रूह कुद्दस की आवाज़ को नहीं सुना, अपनी मनमानी की है। बाइबल मुकद्दस में जहाँ कहीं भी ईमानदारों ने, अगर मूसा ने अपनी मनमानी की है तो उसकी मनमानी के बायस वो उस पाक जगह पर जिसे मुल्के कनान वादा की ज़मीन कही थी दाखिल नहीं हुआ। खुदावंद ने उसे कहा था कि जब मैं तुझे कहूँगा इस चट्टान पर मारना तब तू मारना, लेकिन मूसा बेचैन हुआ, लोग बुड़बड़ा रहे थे कि मूसा हमें पानी चाहिए, मूसा हमें ये चाहिए, और उसने अपनी मर्जी से उस चट्टान पर 2 बारी अपना आसा मारा। और खुदावंद खुदा ने इसी वजह से उसे क्या कहा था कि तू मुल्के मिस्र में मुल्के कनान में दाखिल ना होगा। सो बहुत दफा ईमानदार अपनी मर्जी से, खा पुराने अहदनामा में देख लें खा नए अहदनामा में देख लें, जब रूह कुद्दस की आवाज़ को ना करके कुछ करने की कोशिश करते हैं तो नाकाम होते हैं। इन तमाम हालात के लिए जब पालूस ने भी अपनी मर्जी की, इमाल की किताब में जिक्र मिलता है कि उसने खुदावंद खुदा के फजल को जानने के बाद फिर वो हैकल में गया और अपना सर मुंडवाया और वहाँ पर मन्नते मानी, और खुदावंद खुदा ने उसके इर्ज में कहा कि अब तो जिस हिम्मत को मैं भेजना चाहता था वहाँ पर नहीं गया, इसलिए तू कैद खाना तेरे लिए तैयार है, वहाँ पर तुझे मैं इस्तेमाल करूँगा। फिर यूना जिसे नबी भी कहा गया है, जिसे बघोड़ा खुदा का कादम भी कहा गया, खुदा का कलाम सुना के नैनवा को जा और अपनी मर्जी की और तरसीस को भागा। तो बहुत से खात्मों की बाइबल मुकद्दस में हमें क्या मिलती है? मन मर्जी मिलती है। बलाम का हमें जिक्र है, बलाम और उसकी गदी के दरमियान जो वाकया, बलाम भी अपनी मनमर्जी करता हुआ नजर आता है और वो चाहता है कि उसकी गदी जिस वक्त तरफ वो चाहता है जाए, और वो ये नहीं समझता था कि खुदा का यहोवा का फरिश्ता तलवार लेकर खड़ा है जो उसे कत्ल कर सकता है। लेकिन गदी ने देख लिया लेकिन बलाम ने ना देखा, ना समझा कि खुदा की मर्जी क्या है। इसी तरह नए अहदनामा में हमें हननिया और सफीरा का भी जिक्र मिलता है कि दोनों ने कहा कि हम खुदा के हुजूर अपनी जायदाद को बेचेंगे और सारा कुछ रसूलों के कदमों पर रखेंगे। और जब हरे हरे नहीं, उस वक्त हरे हरे नहीं, जब उन सिक्कों को देखा जिस पर कह सकते हैं कि कैसर अगस्तस की सूरत बनी हुई थी, जब उनको सिक्कों को देखा, उन दिनारों को देखा, तो उनकी दिल की रफ्शें बदल गई। सो बहुत जगह पर हमें ये जिक्र मिलता है, बहुत जगह पर, ईमानदारों की जिंदगी में भी, गैर ईमानदारों की जिंदगी में भी। दाऊद की जिंदगी भी हमारे लिए मिसाल है कि जब उसने खुदा के पाक रूह को नहीं सुना, हम यकीन से कह सकते हैं कि वो खुदा के पाक रूह को बहुत ऐसे तरीके से सुनता था, समझता था। वो परस्तार था, वो बादशाह था, वो खुदा का चुना हुआ खादिम था। उसने अपनी मन मर्जी की तो गुनाह किया, हत्ती ऊरिया को मरवा दिया, उसकी बीवी को ले लिया, उससे बेटा पैदा हुआ, उसे कत्ल, उसको खुदा ने मारा। सो हमें यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस कहता है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। हम ईमानदारों को हर रोज रूह से मामूर होना है, यानी कि रूहुल कुद्दस से मामूर होंगे तो रूहुल कुद्दस की आवाज को सुनेंगे। और ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी के हर एक दिन में पाक रूह को सुने। हम सब भी नाकाम होंगे, हो सकता है हम होते हैं, हो सकता है हमने बहुत सी मिन्नतें मानी हों कि खुदा मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ, तेरे हुजूर मन्नत मानता हूँ कि ये करूँगा ये करूँगी, लेकिन नहीं की। बहुत दफ़ा खुदा मैं, आज मुझे पैगाम बहुत अच्छा लगा है, आज मेरी कांट छांट हुई है, आज मुझे खुदा के कलाम में खुदा का पाखरू कहता है, मैं दुआ नहीं करता, मैं दुआ किया करूँगा। ऐसा कोई वादा किया हो फिर उसे भूल गए। खुदा मैं तेरे हजूर वक्त पर आना चाहती हूँ, लेकिन सुस्ती, वो खुशबू से भरा हुआ मेरा बिस्तरा मेरी जान नहीं छोड़ता। मैं अगली दफ़ा ऐसा करूँगी, करते रहते हैं। और बहुत दफ़ा हम नाकाम होते हैं, एक ही वजह है, खुदा पाक रूह की आवाज़ को हम नहीं सुनते। बहुत दफ़ा हम जब अपनी कोशिश से, अपनी कुव्वत से, इंसानी कुव्वत से कुछ करने की कुव्वत करते हैं तो नाकाम होते हैं। इसलिए हमें तीन झूठों का, तीन नाफरमानियों का, या तीन कह सकते हैं सख्त दिली के मुजाहरों का जिक्र मिलता है जो हम ईमानदार रूहुल कुद्दस के खिलाफ करते हैं। पहला कौन सा गुनाह करते हैं हम ईमानदार? याद है हननिया और सफीरा की कहानी, रूहुल कुद्दस के खिलाफ झूठ बोलते हैं। झूठ कब बंदा बोलता है? जब अपने आप को बचाना चाहता हो। हम सब भी झूठ तभी बोलते हैं जब अपने आप को ना नीचा करना चाहते हैं, ना अपने आप को किसी के सामने गलत से पेश करना चाहते हैं कि हम अच्छे नजर आए, हमारी सूरत, हमारा सब कुछ बेहतर नजर आए। याद रखिए, खुदा रहीम है, हमें खुदा के हजूर दुरुस्त होने की जरूरत है, आदमियों के सामने डरने की जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जी कमजोर हूं, अगर कमजोर हैं तो हमें कमजोर कहने की जरूरत है, जोरावर बनने की जरूरत नहीं है। खुदा मैं इस काबल नहीं हूं ये कहने की जरूरत है, बजाय कि हम बड़े बड़े खुदा के साथ वादे करें। और वाज की किताब में लिखा है कि तू खुदा को और फरिश्तों को बेजार करे। सो हमें सोच समझ कर, हननिया और सफीरा की ज़िंदगी में उन्होंने मन्नत मानी और उस मन्नत को और उस ख्वाहिश को और उस मखसूसी की हुई दौलत को, जगह को खुदा के नज़र तो कर दिया लेकिन पूरा ना किया, क्योंकि सिक्कों की आवाज़, सिक्कों की वो थैली जो अजीब आवाज़ थी उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। इसलिए खामंद और बीवी को वहाँ पर लिखा उन्होंने एका किया। हमें भी जो खामंद और बीवी हैं एका करने की ज़रूरत है, बदी की बातों में नहीं बल्कि भलाई की बातों में। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि हम वापस आए और फिर दोबारा इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। मैं और भाई यूनुस मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, जैसे मंडी, जजमान, फिर आने वाले दिनों में 3 या 2 दिन का ट्रिप होगा, जहाँ पर इस इलाका में जो चोलिस्तान का इलाका है बाइबल तकसीम की जाएगी। और लोग खुशी से लेने के लिए आ रहे हैं, लोग भूख प्यास रखते हैं, कुछ सिर्फ घर में 2-3 हैं लेकिन फिर लेकर जाना चाहते हैं। और हमारी यही कोशिश है कि हर एक के पास उसकी अपनी शख्सी बाइबल हो जो पढ़ सकता है। और एक खूबसूरत बात जो देखने को मिली खादमों की ज़िंदगी में, खादम और उसकी बीवी, जैसे एक गड्ढे में 2 बैल होते हैं ना, वैसे खिदमत में जुड़े हुए हैं। और उनकी खिदमत में निखार, उनकी खिदमत में बरकत, उनकी खिदमत में कुदरत, उनकी खिदमत में खुदा की बरकत नज़र आती है। क्यों? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं था, खुदा ने हवा को दे दिया। वैसे ही जब कोई खादम और उसकी बीवी, वैसे ही जब आप और आपका खामन दोनों मिलकर दुआ, दोनों मिलकर प्रस्तुति, दोनों मिलकर खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो जो नस्ल पैदा होती है वो रासबाज के उस दर्द को समझती है। आज खानदान क्यों रूहानी तौर पर सूखे हुए हैं, रूहानी तौर पर बंजर जिंदगियां नजर आ रही हैं, यही वजह है। बहुत से पासबानों की खिदमत, मनादों की खिदमत, मबशरों की खिदमत, पादरियों की खिदमत क्यों बहुत दफ़ा रुक जाती है? क्योंकि खामंद और बीवी की आपस में, वो आपस में एतहाद में नहीं है। कैरी मुझे अक्सर ये कहती है कि रहने को मैं वापस अमेरिका में रह सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि खिदमत और बाबरकत हो, ताकि हम मिलकर दुआ करने वाले, मिलकर एक दूसरे को, मिलकर लोगों से तमाम चीज़ों को देखने वाले बने। और अनन्या और सफीरा ने एका किया था बदी पर। आपको जितने भी जो खानदान शादीशुदा हैं, हमें एका करने की ज़रूरत है भलाई पर। दुनिया भर में खादम को देखा, उसकी और उसकी बीवी, उसके बच्चे हैं तकरीबन, हालेलुया, तकरीबन 9 बच्चे हैं, 9 से भी ज़्यादा हैं, खुदा खुदा देता है। उनके घर के कह सकते हैं कि पौनी क्रिकेट की टीम है, 12 होते हैं, उनके 9 हैं। और वो चकूक में जाते हैं, मोटरसाइकिल पर कुछ जाते हैं, साइकिल पर, ना के ईमानदारों में बल्कि गैर कौमों में भी। और जब हमने उनकी तस्वीरों को और उन कहानियों को जो उनके छोटे से मोबाइल में उन्होंने रिकॉर्ड की हुई सुनी, तो देखकर खुशी हुई। सो समझाने का, कहने का मतलब यह है, जब खामंद और बीवी मुत्तफिक होंगे तो बरकत मिलेगी सारे खानदान को। जब खामंद कर रहा है और बीवी खसमा खावे तो फिर बरकत नहीं मिलेगी। जब खामंद खिदमत में है और बीवी कहे कि नहीं, तो फिर बरकत नहीं मिलेगी। इसलिए रूह से मामूर होते जाओ। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर खामंद और बीवी आपस में मुत्तफिक नहीं तो उनकी बरकत रुक जाएगी। ये खुदा के कलाम का वादा है, ये खुदा के कलाम की सच्चाई है। इसलिए जो कुछ मैंने देखा है इर्द गिर्द, वही आप सबको कह रहा हूँ। अगर आप खामंद हैं, अगर आप किसी की शादीशुदा जो बेटी और बेटा यहाँ पर बैठा है, मिलकर खुदा के हजूर खुदा उनको पुकारने की ज़रूरत है, ताकि हम सब भी, ना कि सिर्फ जब आयत पढ़ाई जाए, रही मेरे और मेरे घराने की बात, खामंद और बीवी खुदावन की प्रस्तुति करेंगे और ससुराने में बच्चे भी आ जाते हैं। जब खावंद और बीवी एक होंगे तो फिर बच्चों की क्या मजाल है कि वो अपनी राह लें। याद है ना, हम अक्सर देखते हैं कि गधी या गधे के साथ जब नया बच्चा लगाया जाता है साइड पर, किस लिए लगाया जाता है? ताकि वो सीखे चलना, ताकि अपनी माँ का वो बोझ उठा सके। हम सबको भी खुदावन यीशु मसीह यही कहता है कि मेरा जुआ नरम और मुलायम है, मुझसे सीखो। वो हमारी दाहिनी हाथ दाहिनी तरफ हमारे साथ जिंदगी का जुआ उठाने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत दफ़ा सारा जुआ उस पर है और हम कहते हैं यीशु मसीह लगा रहा है कल तेरा काम। इसीलिए पाकरू खुदा का कलाम कहता है रूह से मामूर हो। जब हम रूह की रहनुमाई में करेंगे तो फिर कामयाब होंगे। फिर पालूस की तरह कामयाबी के बहुत से डंके बजेंगे हमारी जिंदगियों में भी, हमारे खानदानों में भी। सो यहाँ पर एक हवाला मिलता है हमें नया अहदनामा पत्रस की, पहला पत्रस उसका 3 बाब, 3 बाब उसकी 7 आयत को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर शौहर और बीवी के एक एक के बारे में बात की गई है जो रूह कुद्दस की रहनुमाई में बहुत ही जरूरी है। खामंद और बीवी आपका है खुदा के खादम। अगर मैं अपनी ही मनमानी, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ सच, पिछले 4 साल से जब मैं अकेला पाकिस्तान में आ रहा था एक अलहदा बरकत थी। अब जो कैरी मेरे साथ है तो एक मुनफरद अजीब खुशी और बरकत है। पहले मुझे फिक्र होती थी कि वहां पर क्या है, अब कोई फिक्र नहीं, बल्कि अब मुझे पता है कि मेरा जीवन साथी मेरे साथ है। जब हम सफर में होते हैं तो वो दुआ कर रही होती है, जब हम कहीं जगह पर कलाम सुना रहे होते हैं तो वो दुआ कर रही होती है, जब भी उसे फोन करता हूं क्या कर रही हूं, बाइबल पढ़ रही हूं दुआ कर रही हूं, घर की सफाई कर रही हूं दुआ कर रही हूं, गीत गा रही हूं दुआ कर रही हूं। वो गीत बड़ा खूबसूरत था, हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लगते नहीं रुपये। सो दुआ पर भी हमारे रुपये नहीं लगते। पहला पत्रस 3 बाप उसकी 7 आयत, ऐ शोहरों तुम भी बीवियों के साथ अकलमंदी से बसेरा करो और औरतों को नाजक जुल्फ जानकर उनकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। खामंद और वो बीवी जिंदगी की उन तमाम नेमतों के क्या हैं, वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। दुआएं कब रुकती है? जब खामंद यहां और बीवी यहां, दूसरे लफ्जों में खामंद और बीवी आपस में मुत्तफिक नहीं, खामंद और बीवी में आपस में एतफाक नहीं, तो तब क्या होगा? रूहुल कुद्दस से झूठ बोला जाएगा। जब खामंद अपनी मनमानी से बहुत कुछ करेगी तो लड़ाई होगी, फसाद होगा, रूहानियत नहीं होगी बल्कि जिस्मानियत ही जिस्मानियत होगी, झूठ फसाद। उसने कहा आदम और हवा की वो खिचड़ी जो बाग एदन में पकी थी, उन्हें कीता, तू दिता, उन्हें कीता, यही बात होगी। जैसे एक ड्रामा था इंडिया का, तू तू मैं का ड्रामा चलेगा हमारे घरों में। रूह कुद्दस की आवाज़ को और खुदा के कलाम को हमें अपने दिलों में जिंदगी में जगह देने की ज़रूरत है, ताकि हमारी दुआएं रुक ना जाएं। सो आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि कहीं आज मूसा की तरह हम अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे, आज हम हनन्याह और सफीरा की तरह अगर खामंद और बीवी हैं यानी कि शादीशुदा हैं तो हमने किस बात पर एका किया है? क्योंकि पासबान के सामने खुदा की हजूरी में मैं अपने दुख में तकलीफ में मुसीबत में परेशानी में हर हालात में इसके साथ रहूंगा रहूंगी, आमीन, वहां पर अहद होता और उसके बाद किदों मगरों लथे साड़ी जिंदगी लिए अजाब बन गया बन गई, फिर वो हम कॉल भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्यों ये सारी बातें निकलती हैं? रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में नहीं, بلکہ اپنی حسد اور غصے کی حالت میں، پس روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ ہمیں حنانیہ اور سفیرہ سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بدی میں نہیں بلکہ بھلائی میں ایکا کریں۔ اور جب خاوند اور بیوی متفق ہوں گے، جب خادم اور بیوی متفق ہوں گے تو برکت، برکت پر برکت۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو اول ترجیح دینا ہے، نہ کہ کسی اور بات کو۔ آئے ہم خدا کے جڑ چکے ہیں۔